مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم دوستو، وائس آف امریکہ اردو کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی، ہمارے پروڈیوسر ہیں گل رخ۔ آپ یہ پروگرام پاکستان اور انڈیا میں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com اور فیس بک پر ہمارے ایڈریس facebook.com/voa urdu پر بھی براہ راست سن سکتے ہیں۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سے بڑھ کر ایک کمیڈینز سامنے آتے رہے ہیں اور لوگوں کا دل خوش کرتے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے معاشرے میں کچھ برداشت کی کمی بھی نظر آتی ہے۔ تو یہ اس بارے میں ہم اپنے کچھ مہمانوں سے آج گفتگو کرنا چاہیں گے، اور آپ ان مہمانوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے، کیونکہ یہ اپنے شعبے کے بہت ماہر اور مقبول فنکار ہیں۔ اطہر شاہ خان صاحب کو پورا پاکستان جیدی کے نام سے جانتا ہے۔ 70 اور 80 کی دہائی میں انہوں نے بہت سے مقبول ڈرامے اور ریڈیو پروگرامز پیش کیے، اور ان کا کردار کی سب تحسین کرتے ہیں اور اس کی بے ساختگی سب جانتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک مہمان علی میر ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے، اور شفاعت علی، نوجوان کمیڈین اور فنکار، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ جیدی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، بلکہ مجھے کہنا چاہیے اطہر شاہ خان صاحب، ایک ٹی وی کا کردار ہے جس کا نام جیدی ہے اور ایک شاعر ہیں جن کا تخلص جیدی ہے، ہمیں یہ بتائیں پہلے کس نے جنم لیا، اطہر شاہ خان جیدی کیسے بنے؟
بھائی اطہر شاہ خان کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے تعارف ضروری ہے کہ میں پیدا ہوا اور اس کے بعد بڑا ہوا، پڑھا لکھا، اور میرا پھر یہ میں فنکار بن گیا، آرٹسٹ بن گیا اور رائٹر بن گیا۔
جی
تو بیسیکلی جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ میں فنکار ہوں، تو میں اصل میں رائٹر ہوں
جی،
بنیادی طور پر۔ ہیلو،
جی جی بالکل سر، ہم سن رہے ہیں۔
ہاں میں رائٹر ہوں، ڈرامے لکھتا ہوں
جی،
اور مضامین اور دوسرے بہت چیزیں لکھنے کی، جتنی چیزیں وہ سب میں لکھتا ہوں۔
بالکل،
تو وہ بس یہ ہے کہ لکھتے لکھتے بولنے کی بھی تھوڑی سی ہو گئی پریکٹس۔
تو اس کا مطلب ہوا کہ شاعر جو تھے اطہر شاہ خان جیدی، وہ بعد میں ایک ٹی وی کا کردار بھی بن گئے، ہم یہ سمجھیں؟
جی ہاں، ٹی وی کا کردار کیا، میں اصل میں وہ مجھے کوئی اتنا احمق نہیں مل رہا تھا جتنی مجھے تلاش تھی۔ تو بہت تلاش تھی مجھے، بہت احمق ملے تو میں اس سے کروں، لیکن یہ ہوا کہ میں ٹی وی کی یہ بات کر رہا ہوں
جی جی،
تو وہ پھر مجھے آئینے کے سامنے وہ شخص مل گیا
زبردست
جس کی مجھے تلاش تھی، تو پھر میں نے وہ کردار خود کیا۔
تو جو
کہا بھی کچھ میرے دوستوں نے کہ آپ خود کر لیں،
ٹھیک،
تو میں نے کیا کردار، اتفاق سے وہ ذرا سا ہٹ ہو گیا
جی۔ تو جیدی صاحب جو تھے وہ ایک بہت موٹا سا گول چشمہ اور لمبا کوٹ پہنے رہتے تھے، تو آپ اسکرپٹ کے ساتھ گیٹ اپ بھی آپ نے خود ہی سوچا تھا؟
جی ہاں جی ہاں، میں نے خود ہی سوچا تھا، اور میں جو کرتا ہوں خود ہی سوچ کے کرتا ہوں۔
اچھا، تو آپ نے 70 اور 80 کی دہائی میں جو ٹی وی ڈرامے لکھے وہ بہت مقبول ہوئے، اب مسئلہ یہ کہ بیچ میں گیپ آ گیا اور جو نئی نسل ہے وہ ان ڈراموں کے بارے میں نہیں جانتی، تو میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اپنے ان ڈراموں کے بارے میں بتائیں، جیسے انتظار فرمائیے، مجھے یاد ہے ہیلو ہیلو ایک ڈرامہ تھا۔
جی جی، انتظار فرمائیے، ہیلو ہیلو، اور بھی بہت سے تھے، مجھے نام مجھے سب کو یاد نہیں ہے۔ لاکھوں میں تین میری ایک سیریل تھی، یہ شروع میں تھی، بالکل ابتدا میں، تو وہ تھی۔ اس کے بعد یہ باقی جو آپ نے نام لیے تو یہ بہت مشہور ہوئے، سب کے نام مجھے یاد نہیں ہیں۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر،
اور یہ جو ابھی جو کچھ دن ہوئے راما سیریل چلا تھا، بعد اب با ملازہ ہوشیار،
جی
یہ بھی بہت کامیاب رہا، یہ اس پہ تھی، بادشاہت پہ تھی
جی ہاں,
تو وہ اس میں مطلب مذاق نہیں اڑایا تھا بلکہ مزاحی انداز میں اس کو پیش کیا گیا تھا
جی,
تو وہ بڑا اچھا رہا سلسلہ.
اچھا سر آپ کو ہم دوبارہ کال ملاتے ہیں, کچھ آواز میں ڈسٹربینس ہے تو ایک منٹ میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں. شفاعت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شفاعت آپ نے آپ گفتگو سن رہے ہوں گے اتشا خان صاحب کی, کیا آپ کو ان کا کردار جیدی یاد ہے؟ کیونکہ آپ تو ظاہر عمر میں مجھ سے کافی کم ہیں, پتہ نہیں آپ نے ان کے ڈرامے دیکھے یا نہیں دیکھے.
بہت بہت شکریہ مبشر بھائی ایک بار پھر مجھے لائن پہ رکھنے کا. بالکل جیدی ایک ایسا کردار ہے جو دیکھتے ہوئے ہم بڑے ہوئے ہیں, اور میرے خیال میں اولین اگر کوئی میرے ذہن میں کامیڈی کی یادیں ہیں تو وہ اتر شاہ خان صاحب کا یہ کردار جیدی ہے, اور میرے لیے آج خود ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ نے مجھے ان کے ساتھ پینل پہ رکھا ہے. میں گو کہ اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا کہ نہ میرا اتنا قد ہے اور نہ میری کوئی ایسی اچیومنٹ ہے کہ جس کی بنیاد پہ آج میں جیدی صاحب کے ساتھ پینل پہ بیٹھوں. بہرحال جو موضوع ہے آپ کا وہ واقعی ایک ایسی ایک اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے کہ جس پہ بات کرنی ضروری ہے
جی,
اور میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ موضوع چنا ہے آج کا.
جی شفاعت ہمارے ساتھ لائن پہ رہے, ہم ذرا جیدی صاحب سے تھوڑی سی اور گفتگو کر لیں. میرا خیال ہے آپ بھی انجوائے کریں گے اگر ہم ان سے تھوڑی سی اور بات کر لیں. انہوں نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا ہے. سر مجھے آپ کا ایک ریڈیو پروگرام یاد ہے جو 80 کی دہائی میں غالباً جمعے کو چھٹی کے دن صبح میں نشر ہوتا تھا, تو آپ نے ریڈیو پہ کتنا کام کیا ہے؟
ریڈیو پہ
جی سر
کیسے کام کیا,
کتنا عرصہ کام کیا آپ نے؟ شاید کافی زیادہ کام کیا ریڈیو پر.
کام تو بہت زیادہ ہی کیا
جی,
بہت زیادہ, اور وہ اللہ کا شکر ہے پسند بھی کیا گیا
جی.
جب ایک پروگرام تو تھا نہیں جس کا میں نام لوں آپ سے
جی,
بہت پروگرام کیے.
تو ٹاک شوز تھے وہ, یا جن میں آپ کوئی کامیڈی یا لطیفے سناتے تھے یا ڈرامے کرتے تھے, کس طرح کے پروگرام ہوتے تھے؟
بھائی بات سنیں, آپ کچھ کامیڈین کا ذکر کر رہے تھے, کامیڈین میں نہیں ہوں
سر. میں بالکل
میں رائٹر ہوں بنیادی طور پہ
جی سر,
کبھی اداکاری بھی کر لیتا ہوں تھوڑی بہت.
ٹھیک,
تو وہ اگر اس میں کچھ نگاہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کامیڈین ہوں.
بالکل ٹھیک بات,
ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے
جی,
تو اگر میں نے کچھ کامیڈی کر لی اس میں تو میرا خیال ہے غرض نہیں ہے. ہمارے یہاں مشکلاتوں میں ویسے ہی بہت قلت ہے
جی,
تو اگر ہم باتوں میں کچھ مسکرانے کی بات کر رہے ہیں
جی جی
تو کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک. اچھا ڈاکٹر محمد علی صدیقی نے ایک بار کہا تھا کہ رتن ناتھ سرشار کے خوجی کے بعد جیدی اردو ادب کا سب سے بہترین کردار ہے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیدی اتنا مشہور ہو گیا کہ اتھر شاہ خان نام کا سنجیدہ ادیب کھو گیا, تو آپ کریں گے اس اتفاق؟ صحیح بات ہے
بھائی, میں کیا کروں, میں بہت سنجیدہ ادیب تو کبھی نہیں رہا
جی,
بس جو لکھا مزاح میں زیادہ لکھا ہے
جی,
تو اسی لیے وہ مشہور بھی ہو گیا زیادہ, تو بس یہی ہے آپ کے سامنے ہے جو کچھ بھی ہے.
اچھا کل بھی آپ نے غالباً ایک مشاعرے میں شرکت کی ہے کراچی میں, تو آپ ابھی بھی جاتے ہیں مشاعروں میں اور اپنا کیا نیا کلام بھی کہہ رہے ہیں؟
نیا کلام تو میں نہیں کہہ سکتا, ہاں تھوڑا بہت اس میں کچھ نیا بھی آ جاتا ہے اتفاق سے
جی,
تو میں کل مشاعرے میں تھا اور وہ مشاعرہ بہت اچھا رہا اس لحاظ سے
جی
کہ داد بہت ملی
ماشاءاللہ,
مجھے ہی نہیں اوروں کو بھی ملی. ہاں
جی,
ایسا نہیں ہے کہ میں چھا گیا وہاں پہ اور کوئی نہیں تھا, اور بھی تھے سنانے والے بہت اچھے اچھے
جی,
تو میں نے جو سنایا اس پہ داد زیادہ مل گئی تھی اتفاق سے.
ٹھیک, تو ہم نے آپ کی یہ مزاحیہ شاعری تو سنی ہے پڑھی بھی ہے, آپ نے سنجیدہ شاعری بھی کی ہے, غزلیں بھی کہی ہیں؟
جی ہاں میں نے کہی ہیں غزلیں بھی, اور وہ اچھی لوگوں کو لگی
جی.
اصل میں بات یہ کہ ہمارا مزاج زیادہ پاپولر ہو جاتا ہے
جی,
جلدی قبولیت ہو جاتی ہے اس کی, تو ہنسی میں نے آپ کو بتانا کہ ہمارے یہاں بہت کم ہے
جی,
تو اگر ہنسنے کا موقع مل جائے تو لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں.
درست,
تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میں نے کچھ مزاح میں بات کی تو مقبول ہو گئی
جی. مجھے, میں یہاں پہ امریکہ میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اچھی انگریزی بولوں, تو مجھے دوستوں نے مشورہ دیا ہے کہ جیدی صاحب بہت اچھی انگریزی بولتے تھے, وہ انگریزی آپ نے کیسے ایجاد کی؟
भाई वो अंग्रेजी जो है वो इत्तेफाक से कोई जुमला कह दिया होगा लोग उस तरह से, तो प्रोड्यूसर ने मेरे कहा कि अटल भाई ये रखे आप थोड़ा बहुत अंग्रेजी कर ही रखे, तो फिर वो मैंने कुछ किया ऐसा इसमें कि अंग्रेजी भी आ गई थोड़ी बहुत
जी।
तो अजीम सरवर साहब मेरे प्रोड्यूसर होते थे रेडियो के
जी,
बहुत अच्छे प्रोड्यूसर
जी सर,
वो बहुत उसको बढ़ावा देते थे अपने टैलेंट को।
अजीम सरवर साहब खुद भी काफी मजे की बातें करते हैं। आप ये बताएं अशफाक अहमद ने तलकीन शाह के ड्रामे और कमाल अहमद रिजवी ने अलिफ नून के ड्रामे किताबी सूरत में शाया किए थे, तो आपने भी अपना लिखा संभाल के रखा, कुछ किताबी सूरत में शाया किया या नहीं?
नहीं कोई नहीं किया अभी तक, इंशाल्लाह करूंगा वक्त मिला तो
जी,
देखें अल्लाह माली से।
अच्छा मैं बताएं कुछ संजीदा ड्रामे भी आपने प्रोग्राम भी किए, यानी जैसे हमें तो अब जाहिर है याद है, तो मैं वो संजीदा ड्रामे चाहता हूं कि आप उनका जिक्र करें, हमें बताएं उस बारे में।
मतलब मैं संजीदा ड्रामे बहुत ज्यादा नहीं है
जी,
वो चूंकि अगर शुरू में तो मैंने कुछ जिंदगी में गाई तो बस वो चल सो चल हो गया, प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि आप मिजाज जरूर लिखें, बल्कि मिजाज ही लिखें, तो ये तो मेरे लिए मुश्किल था कि सिर्फ मिजाज लिखूं, लेकिन मैंने लिखा मिजाज ही लिखा तो वो जरा ज्यादा मकबूल हो गया।
अच्छा तो
मिजाज भी किए काफी किए
जी, तो क्या हमारा जो फनकार था 70 और 80 के अशरे में लिखने वाला राइटर, वो इतने पैसे कमा लेता था कि घर चल जाए, या कुछ और भी करना पड़ता था?
नहीं कुछ और भी यकीन करना पड़ता है, हमारे यहाँ मुल्क हमारा जो है इसके हाथ से बहुत अच्छा है कि यहाँ पिजीराई जल्दी मिल जाती है
जी।
लेकिन वो जो है कि मार्जा भी जरा मुश्किल से ज्यादा मिलता है
जी। आपने रेडियो पे टीवी पे गालिबन थिएटर में भी सब आपने हर तरह का काम किया, क्या फिल्मों में भी की तरफ नहीं गए उस तरफ कुछ आपका
फिल्मों की बात कर रहा
जी जी फिल्मों की
फिल्में आप फिल्मों की तरफ क्यों नहीं गया भाई?
अच्छा
मैंने काफी लिखी है फिल्में,
अरे जबरदस्त
एज राइटर लिखी है
जी,
काम कम किया किसी ने कर दिया किसी ने नहीं किया
ठीक,
लेकिन लिखी है मैंने। हाँ बाजी मेरे फिल्म थी बड़ी अच्छी
जी,
और भी कई थी, पंजाबी फिल्म थी मेरी मंजी किते डावा।
अच्छा मंजी किते डावा जबरदस्त। तो आपको आप आजकल के ड्रामे और आजकल के जो लोग संजीदा और मिजाहिया हर तरह का काम कर रहे हैं वो आप देखते हैं, आपको किसका काम पसंद है?
मैं असल में ज्यादा नहीं देखता।
अच्छा
इसलिए नहीं कि मुझे आदत नहीं है, बल्कि इसलिए कि बाज औकात मेरे पास वक्त नहीं होता इतना
ठीक
कि टीवी ड्रामा देखूं, और फिर ये ज्यादातर ड्रामे एक ही जैसे हैं
जी,
वो रिपीटिशन इतना ज्यादा है कि मैं क्या देखूं।
तो आप इंडिया के काम देखते हैं उनकी फिल्में या उनके ड्रामे या उनके मजाहिया लिखने वाले लोग, उनसे कुछ वाकिफ हैं आप या?
आपसे मैंने गुजारिश की कि मैंने पाकिस्तानी भी कम देखे हैं
जी,
तो इंडियन तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
ठीक है तो अब आपके क्या मुस्तकबिल में इरादे हैं, जैसे हमने एक काम के लिए तो आपको भी राजी कर लिया कि आप अपना लिखा हुआ छापेंगे
इंशाल्लाह
जी।
भाई मुस्तकबिल क्या, मुस्तकबिल तो बहुत करीब आ चुका, बल्कि मैं मुस्तकबिल में सांस ले रहा हूँ।
ठीक बिल्कुल सही,
हाँ हम तो जिंदा है तो मुस्तकबिल में है।
ठीक है
अभी यहाँ पे कुछ और करना जो है वो अब कितना करेगा आदमी, मैंने बहुत लिखा है
जी,
बहुत लिखा है, एक्टिंग भी की है थोड़ी बहुत, तो ये है कि शाह को हसरत नहीं है अभी।
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमसे, बहुत अच्छी गुफ्तगू की, आपसे फिर किसी दिन हम दोबारा बात करेंगे, और आपसे बात करके बहुत दिल खुश हुआ है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद शफात से और फिर अली मीर से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए।
सदाए जहां वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश, हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं। आपको सदाए जहां कैसा लगता है, राय दीजिए ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं sejradio@voanews.com और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पोस्ट बॉक्स 1399 इस्लामाबाद।
आप दोनों बंदे ले लें लेकिन नाजरीन वेलकम बैक। हमारे साथ शफात मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। शफात, आपने अथर शाह खान साहब की गुफ्तगू सुनी, वो कुछ थोड़े से अनइजी थे ये कहने पर कि हम उन्हें कॉमेडियन कहें।
मुबशर भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए, और दूसरा दोबारा शुक्रिया कि आपने अथर शाह खान साहब को लाइव मुझे टेलीफोन पर सुनाया। वरना मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी उनको इतनी बेतकल्लफी से फोन पर सुन सकूंगा। काफी अर्सा हुआ वो स्क्रीन पे भी नजर नहीं आया, एक दो मुशायरों के अलावा कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई
जी।
तो इतनी बेतकल्लफी से कभी उन्होंने दिल की बातें नहीं कही जिस तरह से आज आपके सामने कही। ये एक सानेहा है कि हमारे जो इंडस्ट्री के और हमारी फील्ड के जो जाने माने हुए लोग हैं वो अपने आप को किसी लेबल में कैद करने से घबराते हैं। ये तरकीकत उसके पीछे हमारा कुछ माशरती और समाजी रवैया भी आपको मालूम है कि वो अगर आर्टिस्ट को कोई एक थप्पा लगा दे तो फिर वो सारी उम्र उस तवक्को ये करते हैं कि आर्टिस्ट उसी थप्पे के अंदर कैद रहेगा। और इसमें एक बड़ा नुकसान ये होता है कि लोग ये तवक्को नहीं करते कि अगर एक आर्टिस्ट लेट्स से अगर कोई सिंगर है तो वो कभी कोई दीगर ओपिनियन भी रख सकता है या कभी कोई किसी दीगर मौजू पे बात भी कर सकता है। यानी अगर एक शख्स के ऊपर ठप्पा लगा दिया जाए कि वो कॉमेडियन है तो उसके बाद लोग ये तवक्को नहीं करेंगे कि वो आदमी कोई ओपिनियन या कोई एक संजीदा बात भी कर सकता है। लोग ये समझेंगे कि अगर इसने बात की है या इसने कलम उठाया है तो यकीनन उसमें कोई मजाका खेज पहलू होना चाहिए, अदरवाइज की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए बहुत सारे अफराद इस चीज से कतराते हैं किसी एक लेबल की तरफ जाने से, और इसके लिए बहुत सारे अवामिल इसके जिम्मेदार हैं, बशमूल हमारे तालीमी निज़ाम के, जिसमें गुंजाइश ही नहीं है किसी ऐसे फन की या किसी ऐसे हुनर की जो कि लोगों को हंसाने पे आमादा कर सके।
अच्छा शवाद, अली मीर भी हमारे मेहमान हैं, आप भी उनकी तरह हर सियासतदान की आवाज़ निकाल लेते हैं, तो मैंने बहुत कोशिश की, मेरी अपनी आवाज़ ठीक से नहीं निकलती, तो आप ये कैसे कमाल कर लेते हैं?
अली मीर हमारा बहुत प्यारा भाई है, बल्कि मैं समझता हूँ कि मैंने अगर कोई आवाज़ें कुछ कई जगहों पे जहां मैं किसी कैरेक्टर को सही तरह से मिमिक नहीं कर पाता तो मैं अली मीर की वीडियोस देखता हूं और अली मीर के जरिए उन आवाजों के नजदीक तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। माशाल्लाह एक ही इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट और स्पॉन्टेनियस है, कैरेक्टर के अंदर हलूल कर जाता है बहुत जल्दी। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा आर्ट है जो मोइन साहब के बाद मादूम हो रहा था, उसको रिवाइव किया अली मीर ने, और मैं किसी हद तक वो अली मीर के ही नक्शे कदम पे कुछ चलता हुआ यहाँ तक आया हूँ।
अच्छा, आप स्क्रिप्ट के मुताबिक कॉमेडी नहीं करते, यानी फिल्मबदी बोलते हैं। लहरी साहब के बारे में भी हमने सुना है, वो भी कभी स्क्रिप्ट के मोहताज नहीं रहे, लेकिन फिल्मबदी बोलने में काफी रिस्क नहीं होता कि कुछ उल्टा सीधा मुंह से निकलना जाए?
मुबशर भाई, नामुमकिन है कि कोई कॉमेडियन स्क्रिप्ट के बगैर, माजर चाहूंगा, कि कोई कॉमेडियन स्क्रिप्ट के बगैर स्टेज एक घंटे तक संभाल सके। यूजली मेरा स्टैंड अप 1 से 1.5 घंटे तक का होता है और इसमें कुछ लाइंस, कुछ पॉइंटर्स लिखे होते हैं, कुछ पंच लाइंस वगैरह लिखी होती है, लेकिन यूजली स्टेज की ट्रेनिंग या स्टैंड अप की ट्रेनिंग कुछ ऐसी नौयत की है कि आपको ऑडियंस का मूड देख के और जिस बात पे अप्लॉज ज्यादा आ रहा हो उसके अप्लॉज के हिसाब से आपको गुफ्तगू को लेके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं 100% स्पॉन्टेनियस करता हूँ या इम्प्रोवाइज करता हूँ उसको। अलबत्ता ये जरूर है कि 100% स्क्रिप्ट भी फॉलो करना मुमकिन नहीं है, सिर्फ पॉइंटर्स या वन लाइनर्स की हद तक तो मुमकिन है, लेकिन अगर 100% आप स्क्रिप्ट को फॉलो करेंगे तो उसमें वो टाइमिंग और वो जो कॉमेडी का जोर है वो खत्म हो जाएगा।
अच्छा, आपने अनवर मकसूद साहब के साथ भी कुछ काम किया है, तो वो कैसा तजुर्बा रहा आपका?
अनवर साहब के साथ काम करते हुए टांगे कांप रही थी, जिस्म कांप रहा था, धड़ कांप रहा था, जब मेकअप के लिए ARY के बेसमेंट में मौजूद मेकअप रूम पे गया और वहां पे जब मुझे मेकअप की टेबल पे बिठाया गया तो मैंने सेवन अप अपने लिए ऑर्डर की, यार जरा गला खुश हो रहा है तो मुझे मंगवाई जाए। तो मेकअप आर्टिस्ट ने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया आपको क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि भाई मोइन साहब भी जब यहाँ आते थे तो इसी टेबल पे बैठते थे और ऐसे ही आके पहले सेवन अप ऑर्डर करते थे, और ये कह के उन साहब ने तस्वीरों का एक बंडल अपने बस्ते में से निकाला और कहा देखें जी मेरे उनके साथ कितनी जबरदस्त यादें वाबस्ता है। फिर इसी किस्म का कुछ हालत तब हुई कि जब मैं सेट पे गया तो सेट पे मौजूद जो डायरेक्टर थे ये वही साहब थे जो कि मोइन साहब और अनवर साहब को डायरेक्ट करते थे। जब मैं शूट करके पहला स्क्रिप्ट शूट करके बाहर आया तो मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे, उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा आज आपने मोइन भाई की याद दिला दी। मेरे ख्याल से मुझे मोइन साहब से कंपेयर करना ये एक ऐसी बात है कि खुद मेरे ख्याल में शायद मोइन साहब के साथ ज्यादती है कि मुझ जैसा छोटा आदमी, मुझ जैसा एक छोटा सा जर्रा और एक सूरज के साथ सामने कंपेयर किया जाए। मुझे दो तीन जन्म दरकार है मोइन साहब के लेवल तक पहुंचने के लिए, और उन दो तीन जन्मों में भी मुझे मजा के अलावा और कुछ करना नहीं पड़ेगा तभी जाके मैं उस लेवल को अचीव कर सकूंगा। क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं अभी मौजूदा दौर के जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जो भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो अपने जमाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मोइन साहब एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने अपने जमाने से 25 साल आगे का या 30 साल आगे का काम किया था। और वो वजह ये कि आज भी अगर आप उनकी कोई कॉमेडी देखें, आज भी आप उनका कोई स्टेज देखें, कोई ड्रामा देखें, तो वो बहुत रेलेवेंट लगता है आजकल के हालात से। मुझे नहीं लगता कि हम इस नौयत का कोई भी काम कर रहे हैं कि वो आज से 10-15 साल बाद भी किसी हद तक भी रेलेवेंट होगा।
ठीक है, हमें अली मीर साहब ने ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आज शफाज साहब से भी एक सवाल ये किया था, हमने असद शाह खान जेदी साहब को अपने प्रोग्राम में मधु किया था, तो क्या आपको उनके ड्रामे उनका काम कुछ याद है? अली मीर साहब आप सुन सकते हैं मुझे?
जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम अली मीर साहब, हमारे मेहमान कुछ देर पहले असद शाह खान जेदी साहब थे, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या आपको उनके ड्रामे याद हैं, कुछ उनका काम याद है?
बिल्कुल जनाब, वो किसको नहीं याद, वो तो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड हैं और वो पायनियर्स हैं। और जब भी कोई काम शुरू होता है उसको जो स्टार्ट करने वाला होता है सारा क्रेडिट उसी को जाता है, क्योंकि उसके सामने कोई एग्जांपल नहीं होती, वो एक फाउंडेशन बना रहे होते हैं। हम लोगों के लिए तो बहुत आसान हो जाता है बाद में, हम कहीं मोइन अख्तर साहब से इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं, कहीं जदी साहब से इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो थोड़ा सा वो। तो ये तो बिल्कुल इन्होंने तो शुरू किया है ये वाली चीज टेलीविजन के साथ ही। तो क्या क्रिएटिव लोग थे, कमाल के लोग थे, इनकी कॉमेडी, इनका सैटायर, वंडरफुल वंडरफुल, नो डाउट, वो तो बहुत बड़ी पहचान है पाकिस्तान की।
अच्छा, अब अली मीर साहब मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो यानी थोड़ी अजीब सी है, मैंने शफाज से भी ये बात की कि जब मैंने ये जिक्र किया कि हम आज कॉमेडी पे बात करेंगे तो वो थोड़ा अनइजी हो गए और उन्होंने मुझे टोक के कहा कि मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, मैं लिखता था, राइटर था। हालांकि देखिए उनका किरदार जेदी कैसा मकबूल हुआ और जिसने भी देखा है वो कभी भुला नहीं सकता, फरामोश नहीं कर सकता, और इसकी उसकी तारीफ की जाती है, लेकिन वो अनइजी थे ये कहने पे। तो क्या आपको कभी इस तरह के रद्दअमल का भी सामना हुआ है कि आपको यानी आपके जज्बात भी कुछ इस तरह के हो गए हों कि आपको कोई कॉमेडियन कहे?
नहीं नहीं, इसमें ऐसी कौन सी बात है, देखें जी एंटरटेनमेंट कर रहे हैं ना जी, इसमें आप मिमिक कहिए, आप कॉमेडियन कहिए, आप एक्टर कहिए, इसमें तो सारा कुछ आ जाता है, तो इसमें तो ऐसी कोई चीज, बल्कि ये तो एनालिसिस होता है। अगर आप हमारा खबरनाक देखें जो मैं कर रहा हूँ, ये तो वही चीज होती है जो खबरों में जो न्यूज एंकर्स करते हैं, 8 बजे के शो में भी वही चीज होती है, 9 बजे भी, 10 बजे भी वही चीज होती है, तो 11 बजे जब खबरनाक लगता है सेम चीज होती है, सेम दिन की टॉप स्टोरीज होती है, लेकिन उसको कॉमिक वे में, फनी वे में उसको किया जाता है, इसलिए लोग उसको पसंद भी करते हैं, उस अंदाज को पसंद करते हैं। थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है ये, क्योंकि उसमें फन ऐड करना होता है दरमियान में
जी। अच्छा, असद शाह खान साहब ने जिंदगी भर एक ही किरदार किया जिसकी वजह से लोग उन्हें एक ही नज़र में देख के पहचान लेते थे, अब आपने बेशुमार किरदार किए और ऐसा लगता है कि अली मीर की ज़ात उनमें गुम होके रह गई है, क्या ये बात दुरुस्त है या ये खूबी है?
ये मैं कह नहीं सकता, इसलिए कि मैंने तो किया ही यही है, और वैसे अच्छा है, ज्यादा पहचान जाते हैं बहरा लोग काफी, लेकिन ये कि उतना ज्यादा डिस्टर्बेंस वाली चीज नहीं होती
जी,
तो ठीक है, रात क्या गुम होनी है, बीच में अपने ही फ्लेवर हैं सारे, शेख रशीद बनता हूँ तो वो भी मेरे ही मुंह से निकल रही है आवाज, और अगर मुशरफ बनता हूँ तो वो भी मेरे ही मुंह से निकल रही है, इमरान खान बन रहा हूँ तो बेसिकली तो अली मीर की जात है ना जिसमें से निकल रही है ये सारी आवाजें
जी। मोइन अख्तर ने भी मोइन अख्तर ने भी जिंदगी में बहुत भेज बदले थे, तो आप कैसे खुद को उनसे मुख्तलिफ समझते हैं?
अगर इसको और आसान कर दें सवाल को आप पूछने में, तो मेरे लिए जवाब देना आसान होगा।
यानी आप भी रोज़ाना एक नया रूप धारते हैं, वैसी आवाज़ निकालते हैं और लोगों को मुस्कुराहटें देते हैं।
मेरी भाई अब जो है ना रूटीन ये बन गई हुई है जी, कि हमारा 4 times a वीक होता है
जी।
वो जब पुराना टाइम था उसमें तो 1 time a week हुआ करते थे प्रोग्राम।
बिल्कुल।
अब ये थर्सडे को भी फ्रेश हुआ है, फ्राइडे को भी फ्रेश है, सैटरडे को भी फ्रेश है, संडे को भी फ्रेश है, तो डेली ही किसी एक नई आवाज में, नई शक्ल में मेरा फोकस उसी पे होता है कि आज मैंने क्या करना है। जब वो तय हो जाता है कि आज ये करना है, फिर मैं उसी की वीडियोस देखता हूँ, उसी की आवाज की प्रैक्टिस करता हूँ। फिर जो जब स्क्रिप्टिंग होती है इसकी, तो उसमें भी बैठ के कोशिश होती है कि स्क्रिप्ट उसी की आवाज में बने, चाहता कि ज्यादा अच्छे वो ह्यूमर क्रिएट होते। लेकिन ये अब रूटीन बन चुकी है। इससे ज्यादा 4 times जब आप हफ्ते में शो दे रहे हो तो इसके बाद और कोई गुंजाइश बचती नहीं है, तो इसलिए मैं तो और कोई चीज करता नहीं इसके अलावा जब तक ये कर रहा हूँ खतरनाक। अभी तो माशाल्लाह इसके 1500 से ऊपर हो गए एपिसोड, को 300-400 के करीब तो गेटअप्स हो चुके हैं।
जबरदस्त,
बड़ा कुछ इस पे मिल भी चुका है। अच्छा,
लेकिन ये इतना ज्यादा काम करने से फिर कभी आपको लगता है कि आप अपने आप को रिपीट कर रहे हैं?
नहीं सर, उसकी वजह ये है कि कैरेक्टर जो है वो सारे के सारे चेंज होते जाते हैं। ये वो तो नहीं है जैसे जब आपने शुरू किया तो उस वक्त पीपल्स पार्टी का दौर था, खबरनाक जब शुरू किया
जी।
तो उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे, परवेज मुशर्रफ उनके साथ सदर थे, फिर वो नया उनकी कैबिनेट बनी, रहमान मलिक वगैरह आ गए, फिर वो टाइम खत्म हुआ, फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, फिर उनकी नई कैबिनेट बनी, फिर ख्वाजा आसिफ वगैरह आ गए, साद रफीक वगैरह आ गए, फिर वो खत्म हुई। अब जो पीटीआई की नई कैबिनेट आ गई है, अब फयाज चौहान वगैरह आ गए हैं, फवाद चौधरी आ गए हैं, फला फला फला, वो वक्त के साथ बदलते रहते हैं चेहरे। दूसरे नंबर पर यह कि रिपीट इसलिए नहीं होती चीजें कि हम किसी ना किसी सिचुएशन के ऊपर करते हैं प्रोग्राम
जी।
तो सिचुएशन के ऊपर जब करते हैं, जैसे कोई खबर देखते हैं, कौन सी बड़ी खबर, जो टॉप स्टोरी हो उसको उठा के उसके ऊपर जॉक सुनाते हैं
जी।
तो वो बात नहीं होनी चाहिए, जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं रिपीट होनी चाहिए। तो कैरेक्टर्स तो अब हमारे 1 महीने में 16 खबरनाक होते हैं
जी।
एक साल में ये देख लें कितने बनते होंगे,
ये तो काफी ज्यादा हो गए,
मैंने ख्याल है 200 से भी ज्यादा, 250 के करीब बनते होंगे। तो इतने में मेरा ख्याल है टोटल सेलिब्रिटीज इतनी ज्यादा नहीं होने लगी पाकिस्तान के अंदर। तो बात और खबर, बात और खबर सिचुएशन उसके साथ प्ले इस तरह से करते हैं, कॉम्बिनेशन बना बना के। तो ऐसा कुछ आया नहीं कभी रिस्पॉन्स।
अच्छा, मैंने एक दफा आपसे पहले काफी अरसा पहले आपसे एक दफा बात हुई थी, मैंने एक सवाल किया था, मैं चाहता हूँ आज अपने सामईन के लिए दोबारा आपसे करूँ कि आप ये एक आदमी है और 100 बंदों की आवाज निकाल लेता है, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? कैसे एक ही हलक से इतने मुंह से इतनी बहुत सी आवाजें निकल आती है? क्या यानी होता क्या है ये, यानी ऐसा क्या है कि मैं नहीं कर पा रहा और आप कर लेते हैं?
ये होता यूं है कि खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा, मैंने कभी प्रैक्टिस की भी नहीं है, वो इसलिए कि जैसे मैं आज मैंने क्या करना है इसका मुझे नहीं पता होता। यहाँ आते हैं, खबरें देखते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्च टीम बैठी होती है, सारे प्रोड्यूसर वगैरह बैठे होते हैं, फिर मुख्तलिफ चीज़ें देखी जाती हैं, अखबार की खबरें शेयर की जाती हैं, टीवी चैनल्स की खबरें शेयर की जाती हैं, फिर म्यूचुअली किसी एक चीज़ के ऊपर आते हैं कि ये वाली डमी आज करनी है और उसके साथ ये सिचुएशन होगी। तो अब जब वो करनी होती है फिर उसके बाद मैं उसी में कोशिश करता हूँ, किसी करेक्टर में रहूँ, अब उसके बाद दाएं मैं ना करूँ। अब वो डेली प्रैक्टिस हो जाती है हर रोज, जैसे हमारी जब रिकॉर्डिंग्स होती हैं तो उनको काफी टाइम लग जाता है, दोपहर से रात तक का टाइम लग जाता है उनको शूट करने में, वो सारी प्रैक्टिस ही हो रही होती है। वो जब आप सारा दिन एक आवाज में बात करते रहते हैं तो फिर वो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर वो दूसरे दिन तीसरे दिन जितने मर्जी पर करेक्टर बदलते रहे वो ठीक हो जाता है।
कभी किसी सियासतदान ने
प्रैक्टिस नहीं की हुई
जी, कभी किसी सियासतदान ने आपकी परफॉर्मेंस पे कोई रिएक्शन दिया, कोई नाराजगी या कोई शाबाशी कुछ मिला ऐसा? या अक्सर होता है,
शाबाशियां बहुत मिली हैं, अगर मुलाकात होती है तो हर एक कॉम्प्लीमेंट देता है, अल्लाह का शुक्र है। मैं इस मामले में बड़ा लकी रहा हूँ, अगर किसी ने हमारे प्रोग्राम के ऊपर तनकीद भी की है, जैसे किसी को अगर तकलीफ हुई है, तो वो उसने हमेशा, हालांकि गेटअप मेरा होता है लेकिन वो मुझे नहीं कहते, वो बाकियों को कह रहे होते हैं, मुझे फेवर दे रहे होते हैं। इस लिहाज से समझें कि ये एक लकी रहा हूँ। बाकी इस तरह की कभी इतना ज्यादा इंटरेक्शन हम करते भी नहीं है, इतना ज्यादा वो नहीं रखते बीच में चीजें कि जिससे हर चीज ही एक्सपोज हो जाए और हर एक को एक्सेस हो
जी।
जिसको जो रिजर्वेशन हो वो चैनल तक करते हैं बात, उसमें से जो बात हम तक आने वाली हो तो आ जाती है, अदरवाइज ऐसी कभी बदमस्ती अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं। कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं आपके सामने।
अच्छा, हमारे साथ शफात भी हैं, आपने शफात का काम देखा होगा, आपको कैसा लगता है उनका काम, कुछ कमी बेशी क्या आप तबसरा करेंगे?
शफात माशाल्लाह द बेस्ट आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, एक बहुत जबरदस्त शफात के अंदर एक एनर्जी है बहुत ज्यादा, वो एनर्जी जो है वो यानी आप उनको, उनकी जो बड़ी बात यह है कि आप उनको छोटी सी लाइन में वो उसको अदा ऐसे करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा देखकर, और जबरदस्त एक्टर है, जबरदस्त एक्टर है, मिमिक भी बड़े शानदार हैं, कॉमेडियन भी बड़े शानदार हैं, एक्टर भी बड़े शानदार हैं, और बड़े पढ़े लिखे आदमी, हालांकि इस लाइन में इतना ज्यादा रुझान नहीं होता लोगों को पढ़ने लिखने का, वो बड़ा अच्छे, बहुत ही अच्छे, बड़े फैंटास्टिक, वन ऑफ माई फेवरेट्स।
कभी ऐसा हुआ कि आप दोनों ने साथ काम किया हो?
हाँ जी, खतरनाक मेरे साथ करते रहे, शफात ने कई प्रोग्राम किए।
अच्छा,
शफात ने प्रोग्राम किए, शफात मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारा तो अच्छा चालक भी रहता है
जी। शफात आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं? शफात
जी जी,
हाँ शफात आप जी जी, हम गुफ्तगू कर रहे थे पॉलिटिकल स्टाइल के बारे में, तो आप ये बताएं कि आपके तजुर्बात क्या अली मीर साहब से कुछ मुख्तलिफ हैं, या आपके साथ भी वैसा ही हुआ है जब आप किसी की नकल उतारते हैं तो क्या कैसा प्यार आपको उसका रद्दमल मिलता है?
अली मीर बहुत खुशकिस्मत आदमी है और अली मीर बहुत चालाक आदमी है।
अरे
इसको खुद को डिस्गाइस में रखना आता है और इसको खुद को कवर लेना आता है, और ये मोर्चे में बैठ के गोली चलाने वाला फौजी है।
जबरदस्त,
ये बड़ा जबरदस्त आदमी है, ये शातिर आदमी है, जरा थोड़े से जज्बाती और वो थोड़े से इस मामले में जरा मैं ये कहूंगा कि थोड़ा जल्दी पटरी से उतर जाते हैं।
अच्छा,
तो एक्सपोज हो जाते हैं बहुत जल्दी, जैसे अली ने लव यूज किया ना, कि जैसे वो अपने आप को ज्यादा एक्सपोज नहीं करते और चैनल तक ही मामलात रहते हैं। मुझे कुछ लोगों की तरफ से प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, कुछ की तरफ से अभी भी करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से बिल मुशाफा मुलाकात हुई और मामलात तय पा गए, कुछ लोगों से मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई, वो इक्का दुक्का दूर पार से घूमते घामते मैसेजेस मिलते रहते हैं।
शफात
मुझे
ये लगता है कि आप यानी सियासी तौर पे भी थोड़े से आपके अपने ख्याल हैं, आप साहिब राय आदमी हैं और उसका इजहार करते रहते हैं, मेरा ख्याल शायद इस वजह से मुश्किल होती होगी।
मैंने जैसे मुबशर भाई प्रोग्राम के शुरू में अर्ज किया, जैसे अथर शाह खान साहब ने जब अपने आप को कॉमेडियन कहलवाने पर एहतजाज किया, तो मैंने आपको अर्ज ये किया था कि ये सोसाइटी का कसूर है कि सोसाइटी किसी भी साहिब राय आर्टिस्ट को तस्लीम नहीं करती, यानी अगर किसी खातून सिंगर को इमरान खान पसंद नहीं है तो ये वो उसका इजहार नहीं कर पाएगी सोशल मीडिया पे आके, उसको वो शायद उसकी शोहरत का आखिरी दिन होगा। इसी तरह कॉमेडी में भी यही साने आए कि अगर आप राय रखते हैं अपनी, किसी कोई एक नजरियाती टाइप के आदमी है, तो आप उसका इजहार अगर सोशल मीडिया पे आके करेंगे तो आपको बैकलैश फेस करना पड़ेगा, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो बैकलैश इंतहाई पढ़े लिखे अफराद की तरफ से भी आता है और बिल्कुल गंवार लोगों की तरफ से भी आता है। इस मामले में मेरे ख्याल में तहरीके लब्बैक में, नून लीग में, लिबरल्स में कोई फर्क नहीं है, इस बारगाह में सभी एक है।
ठीक है, अली मीर साहब ये बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तानियों में मिजाह के लिए बर्दाश्त कम है, यानी आप बेजरर सा मजाक तो कर सकते हैं लेकिन जरा आपने लाइन क्रॉस की और फिर बहुत सख्त रद्दमल आएगा, तो क्या हमारी सोसाइटी के बारे में जो ये ख्याल है बाज़ लोगों का, आप इसे इत्तफाक करेंगे या नहीं?
नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री करूंगा जनाब, हमारा तो बड़ी ऑडियंस बैठी भी होती है यहाँ, उनके सामने हो रहा होता है, मेहमान भी आते हैं, उन पर जोक्स हो रहे होते हैं, और जिसकी भी बल्कि लोग तो खुद फरमाइशें अपनी कर रहे होते हैं कि मेरी भी पैरोडी करें, मेरी भी पैरोडी करें, तो बड़ा अच्छा इंजॉय करते हैं। आदम बर्दाश्त तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे मैंने तो ऐसा नहीं देखा।
अच्छा, आपका तजुर्बा मुख्तलिफ है,
ऐसा नहीं है।
मुझे ये बताएं, मैं
कभी नहीं हुआ किसी के साथ जॉब किया हो तो वो नाराज हो जाए आगे से, ऐसा नहीं हुआ।
कुछ शोज में मैं आपके नहीं देख सका तो इसलिए मैं ये सवाल करूंगा कि क्या आपने, जैसे मजहबी रहनुमा है, मैंने देखा है मौलाना फजलुर रहमान के तो अक्सर उनके नकल उतारी जाती है, उनके बारे में गुफ्तगू की जाती है, लेकिन और भी बहुत से मजहबी रहनुमा हैं, जैसे तहरीक लबैक का भी जिक्र आया, तो आप उस तरफ भी आए कि नहीं?
नहीं, तार कादरी साहब हैं, मैंने उनका भी किया है, उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर। जो तहरीक लबैक है, नहीं इस साइड पे नहीं किया, ये नहीं किया
जी।
अच्छा, आप इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि जो रिलीजियस लीडर्स के हवाले से,
रिलीजियस लीडर, और जाहिर है कि अब ये तो कोई भी आपसे, कोई सियासतदान भी नाराज हो सकता है, कोई मजहबी रहनुमा भी नाराज हो सकता है जब
नहीं,
आप
नहीं,
से
नहीं, 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 वो नहीं।
कटिंग द जो
जो जो देखें, कुछ चीजें ना हम लोग मजाक करते हुए उन चीजों का ख्याल रखते हैं, जैसे जो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाली कोई चीज है ना, उसके ऊपर कोई जोक नहीं करते हम लोग, कोई भी हो, मुसलमान हो ना हो, कोई भी हो।
नहीं नहीं, मजहब से मुतालिक नहीं, हम तो रहनुमा की बात कर रहे हैं,
तो कोई उसकी रिलीजियस चीज के ऊपर मजाक नहीं।
नहीं, मौलाना फजल रहमान की आप नकल उतारे, वो मजहब की नकल तो नहीं हुई ना, हम तो, अब जाहिर है आपने अगर फजल रहमान की नकल उतारी है तो खादिम हुसैन रिजवी की नकल भी उतार सकते हैं।
हाँ, खादिम हुसैन रिजवी की, ये आपने अच्छा आइडिया दिया है
जी,
ये आपने अच्छा आइडिया दिया, लेकिन ये मैंने अभी की नहीं है, लेकिन ताहिरुल कादरी साहब का मैंने किया है, ये जो जमात इस्लामी के हैं सिराजुल हक, इनका मैंने किया है, मौलाना फजल रहमान का किया हुआ है, ये अभी आए नए खादिम रिजवी, जरा थोड़ा सा और मासेज में शायद जाएं, तो बहरहाल अभी तो काफी ज्यादा हो गए, लेकिन इनका मैंने नहीं किया अभी।
अच्छा, मुझे ये शफात की बात पे मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ रद्द अमल दें, कि क्या फनकार को भी कोई सियासी राय रखनी चाहिए या नहीं, बिल्कुल ला ताल्लुक रहना चाहिए सियासत से?
नहीं नहीं नहीं, 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 सियासी राय तो लाजमी होती है ना जी, एक इंडिविजुअल जो इंसान है वो सोसाइटी में रह रहे हैं, तो सोसाइटी में वो देख तो रहा है कि ठीक क्या है, गलत क्या है, वो क्या समझता है, क्या चीज़ ठीक है, क्या गलत है, वो होती तो है, लाजमी होती है। लेकिन शफात, मैंने जैसा आपको पहले कहा ना कि बड़ा इंटेलिजेंट आदमी, उन्होंने बड़ी अच्छी डेफिनेशन की है मेरी, कि मोर्चे में रह के फायर करने वाला आदमी वो ठीक कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए कि मैंने कभी ना तो अपनी राय का इजहार किया, दूसरे नंबर पे ना हमारे प्रोग्राम में भी ये तासर कभी भी देखने वाले को नहीं जाना चाहिए कि मैं किस पार्टी के लिए सॉफ्ट करना रखता हूँ, किसके लिए नहीं। इतना लगना चाहिए कि जैसे अगर आज नून लीग का हम कोई कर रहे हैं, कल पीपल्स पार्टी का कर रहे हैं, अगले दिन पीटीआई का कर रहे हैं, अगले दिन, तो वो सबको लगे कि सबके साथ एक तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है
जी।
वो हमारे लिए नेगेटिव हो जाती है, फिर जो व्यूअर्स हैं वो तो समझ जाते हैं ना, उनके इनके साथ सॉफ्ट करना है, इनके साथ ये वो।
अच्छा, कभी
ठीक है, लेकिन जाहिर है डेफिनेटली राय है जी
जी। कभी ऐसा हुआ है कि किसी आपके किरदार के बारे में कोई, आपने किसी का भेष बदला हो और लोगों ने नागवारी का इजहार किया हो, तो आपने सोचा हो कि इसे आइंदा नहीं करेंगे, ऐसा भी कभी कुछ हुआ है?
नहीं सर, ये मेरे साथ ही
हुआ। अच्छा,
अभी भी नहीं हुआ।
कभी मैं देखता हूँ लोग कहते हैं अनवर मकसूद आप बन रहे हैं, वो मज़ा तो बहुत आता है देख के, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, ये शायद अच्छा नहीं किया या क्या, मतलब मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि लोग अगर कभी इस तरह कमेंट करते हैं, तो ऐसा कभी हुआ नहीं आपके साथ?
नहीं, कैसे लाजमी कहते होंगे, मैंने आपको बताया ना कि ये मैं इतना ज्यादा वो हूँ ही नहीं हूँ, सामने इतना ज्यादा होता ही नहीं हूँ, मैं तो बस अपनी, मेरी एक फिक्स रूटीन है, अपना काम करता हूँ, चला जाता हूँ, बाकी फिर मेरी अपनी निजी लाइफ है, तो वो तो मैं ऐसा करता नहीं हूँ। ये की होगी लोगों ने आपस में, की होगी बात, मुझ तक नहीं पहुंची कभी इस तरह की कोई चीज़ के एतराज किया हो लोगों ने या कुछ इस तरह कुछ किया हो।
अच्छा, ऑलरेडी बहुत मसरूफ हो
किसी चैनल,
ऑलरेडी बहुत मसरूफ़ हैं, मैं इस सवाल आपसे करना चाह रहा था कि आपने फिल्मों की तरफ जाने का कभी सोचा कि नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं कि आप ऑलरेडी टीवी में बहुत बिजी हैं
जी। आपको देखिए ना, आप जब आपको कोई एक फंक्शन करना होता है उसकी तैयारी में कितना टाइम लगता है
जी,
तो हमारा तो डेली इसी तरह ऑडियंस आती है, उनके साथ बैठ के रोजाना, आज नया प्रोग्राम, कल फिर दोबारा नया प्रोग्राम, उसकी तैयारी का टाइम मिलता नहीं है, इसलिए शो से पहले कर रहे होते हैं, उससे अगले दिन फिर दोबारा, उससे अगले दिन फिर दोबारा, उसके बाद फिर नहीं बचता टाइम।
मुबशर भाई, अगर इजाजत दें तो मैं इनसे एक सवाल करना
जरूर, एक नहीं आप 10 सवाल करें।
अच्छा, मुझे देखिए, मैं मुबशर भाई और अली भाई, हम तीनों माजी में एक ही दायरे से मुंसलिक रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि क्या आपने जैसे भी थोड़ी देर पहले कहा कि देखने वाले को ये तासर नहीं जाना चाहिए कि आप की इंक्लिनेशन किसी एक पार्टी की तरफ है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बावजूद आपकी एहतियात के आपका प्रोग्राम एक हद तक एक पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन का इल्जाम लगता रहा है? मैं क्लियर कट कह देता हूँ कि एक जमाने में बहुत हद तक इल्जाम लगता रहा है कि जी खबरनाक बुनियादी तौर पर इमरान खान की का मजाक उड़ाने का प्रोग्राम है और नून लीग के ऊपर इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्या आप तक कभी राय नहीं पहुंची?
देखें इस चैनल के हवाले से तो लोगों की बातें मैं सुनता रहा हूँ, मगर प्रोग्राम के हवाले से तो देखें आपके सामने है, कभी इस तरह होता थोड़ी है कि आज इमरान खान किया है तो कल फिर कोई पीटीआई से करेंगे ये उसके साथ हाथ हल्का रखेंगे, ऐसा हुआ नहीं है।
हमने खुद ख्वाजा आसिफ वगैरह की बहुत नकल उतरते हुए देखी है।
वो तो जो भी गवर्नमेंट होगी ना सर, ममनून हुसैन देखे ना वो बिल्कुल ही एक खामोश से एक इतने कंट्रोवर्शियल तो नहीं है। आप जो जो जिसकी भी हुकूमत है जो डिपेंडेंट है वो शरारत उन्हीं के साथ ही होगी ना, जो असल में हम चल रहे होते हैं खबरों के ऊपर, न्यूज में जो चीजें चल रही हैं, अब अगर वो पीटीआई की हैं या किसी भी एक्स पार्टी की न्यूज में जो चीज चल रही होती है उसको फॉलो करके करते हैं। बीच में एहतियातें यही होती हैं जो मैंने आपको बताया ना, जैसे कुछ जो एक तो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी है इसको नहीं छेड़ते
जी।
अच्छा फिर जो सेंसिटिव साइड है जैसे अदलिया है, फौज है, रिलीजियस साइड है, इन साइडों को हटाकर
सही बात
बस बाकी बाकी शरारतें करते हैं, हल्का फुल्का मजाक करते हैं।
आप ये बताएं कि आप दो तो हमारे सामने मौजूद हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और वाकई हमें फख्र है आप पर, लेकिन आप बताएं कि और लोगों की कोई हमें आप नाम बता सकते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारे ये जो शोभा है हंसी मजाक का इसमें और लोग हैं, यानी अमानुल्लाह हैं लेकिन वो बहुत सीनियर हो गए हैं, जैसे आप लोग आवाज़ें निकाल लेते हैं गेटअप बना लेते हैं, ऐसे और लोग भी हमारे पास हैं, क्योंकि इंडिया में तो स्टैंड अप कॉमेडी बहुत मकबूल हो रही है, वहाँ तो उस दिन ही मैंने जिक्र किया था शफा से जाकिर खान हैं, कुरनिश तलवार हैं, राजेश श्रीवास्तव हैं और मेरा ख्याल है बीसियों लोग हैं इंडिया में, तो बहुत ही काम चल, लड़कियाँ भी हैं, भारती सिंह हैं और बहुत हैं, तो पाकिस्तान में इतना है हमारे पास टैलेंट
बहुत है सर। पाकिस्तान में तो जो टैलेंट है आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आप यकीन करें कि जिस तरह इंडिया की फिल्म्स आगे चली गई है ना हमारे, हमें अब बड़ा टाइम लगेगा वहां तक पहुंचते हुए, उनको हमारी कॉमेडी तक पहुंचते हुए बहुत टाइम लगेगा। यानी अगर मैं उनका कोई भी कॉमेडी शो देख रहा हूँ ना मुझे ना मेरे साथियों में से किसी को इतनी हंसी किसी को भी नहीं आती
जी।
और बल्कि कपिल शर्मा के एक राइटर थे शायद, ये भी कुछ अर्सा पहले मैं शायद कुछ टाइम हो गया, वो आए थे यहाँ हमारी पूरी देख कर गए हैं शूट, तो वो बता रहे थे हम यहाँ से इंस्पिरेशन उठाते हैं सारी।
अच्छा
यहाँ का जो मजाक है वो बहुत लाउड है, बड़ा जबरदस्त है और जो अमानुल्लाह साहब हैं इनके साथ मैंने किया हुआ काम
जी,
इनकी जो आमद है वो कमाल है, जिसे आमद कहते हैं। फिर एक सलीम अलबेला है वो
जी,
वो बड़ी अच्छी उनकी आमद थी। अनी अलबेला साहब बड़ा शरारती करेक्टर था, हमारे साथ इस वक्त जो राइट नाउ खबरनाक कर रहे हैं
जी,
हसन मुराद साहब हैं वो बड़ी शानदार कॉमेडियन है। फिर जो पुनु बराल ये नए लोग आए हैं, इन्होंने नया ज्वाइन किया, जबरदस्त कॉमेडी कर रहे हैं। अच्छा फिर आप जो गेटअप्स की बात करते हैं, आवाजों की बात करते हैं, माशाल्लाह शफात हैं, आउटस्टैंडिंग जबरदस्त हैं। मुबीन कबूल हैं
जी,
मटकू का करेक्टर करते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़ा शानदार कर रहे हैं।
अच्छा मुबीन मुबीन
बाकी फिर मैंने इन पे नेट पे मैंने देखे हैं बहुत सारे, मुलाकात नहीं हुई, यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉलेजेस के अंदर मुख्य लड़के हैं जो कर रहे हैं
जी।
बल्कि इस
अगर इसी सवाल का जवाब मैं भी देना चाहूंगा, मैं शायद आपके सवाल की रूह तक पहुंच जाऊंगा
जी जी।
बेसिकली ये आपने उस दिन भी बात गुफ्तगू छेड़ी थी, फिर हमारा रابطہ शायद कुछ कटा हो गया, कुछ आवाज का सिग्नल भी कट रहे थे। अर्ज किया था कि इस वक्त यूट्यूबर्स काफी तादाद में मौजूद हैं, काफी चैनल्स आ रहे हैं और लोग मिसाल के तौर पर फायजा सलीम है, अली सुफियान वासिफ हैं, जुनेद सलीम है, ये बेहतर काम कर रहे हैं इस वक्त स्टैंड अप कॉमेडी के हवाले से और मजीद स्टैंड अप कॉमेडियंस भी आ रहे हैं। इनफैक्ट आपने मनसाल नाम का एक ग्रुप है, द मनसाल ग्रुप के नाम का, उसमें आप देखें एक हमारे उसमें हर दूसरे तीसरे दिन एक नए कॉमेडियन का स्टैंड अप कॉमेडियन की वीडियो अपलोड होती है। अब अगर हम उसे कंपेयर करते हैं इंडिया से, तो इंडिया में ये जो उर्दू कॉमेडी या हिंदी कॉमेडी के अंदर थोड़ा सा बोल्ड ह्यूमर अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है
जी,
स्टेज की हद तक, लेकिन पंजाबी में ये काम बहुत पहले से एस्टेब्लिश हो चुका था। एक किसी हद तक आप ये समझें कि लोगों की स्टेज से दूरी की वजह बन गया वो, लेकिन एक आवाम की कसीर तादाद ऐसी थी, मैं ऐसे कई लोगों को जाती तौर पे जानता हूँ जो अपने कारोबारी ट्रिप स्टेज ड्रामों के लिहाज से प्लान करते हैं। यानी अगर इफ्तिखार ठाकुर का एक ड्रामा 7 दिन गुजरांवाला में चलना है तो वो 7 दिन का अपना प्लान गुजरांवाला करते हैं, फिर जब वो ड्रामा सियालकोट शिफ्ट से होगा तो वो सियालकोट चले जाएंगे और इसी तरह फिर वो ड्रामा जब लाहौर आएगा तो वापस लाहौर आएंगे, ऐसे भी लोग मौजूद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पढ़े लिखे तबके ने और किसी हद तक कंजर्वेटिव तबके ने उसको मुस्तरद किया और एक हद तक जो जरा कम पढ़ा लिखा तबका था, मैं इसको अनपढ़ तो नहीं कहूंगा लेकिन जो कम पढ़ा लिखा तबका था उन्होंने उसको बड़ा लार्जली एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से पंजाबी स्टेज को एक वो एक किसी और डायमेंशन में चला गया और उर्दू स्टेज तकरीबन मादूम हो गया। अब इस यूट्यूब के रिवाइवल के बाद ये चीज किसी हद तक वापस आ रही है। खवातून नाम का एक स्टैंड अप कॉमेडी का एक पूरा ग्रुप है जो कि इंग्लिश उर्दू दोनों में स्टैंड अप कॉमेडी कहते हैं। इसी तरह एक औरतनाक नाम का एक ग्रुप है जो 7-8 लड़कियां हैं और वो इकट्ठे स्टैंड अप कॉमेडी करती हैं, तो किसी हद तक रिवाइवल है।
ठीक है, अच्छा लेकिन जो पंजाबी हम जुगतबाज देखते हैं जैसे जिनमें अमानुल्लाह भी ज़ाहिर उसी सिलसिले की कड़ी हैं और बाकी जिन लोगों के आपने नाम लिए और लाहौर में आप खास तौर पे उन लोगों को देखते हैं उनके शोज़ होते हैं, वो और उमर शरीफ इनमें क्या फ़र्क था? क्योंकि उमर शरीफ भी स्टेज पर प्रोग्राम करते रहे, खैर उन्होंने ड्रामे ही बाकायदा किए, खाली सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी वैसे नहीं की। ये कितना एक दूसरे से मुख्तलिफ है क्योंकि उमर शरीफ भी बहुत यानी जुमलेबाज तो बहुत बड़े।
सही सवाल आपने मुझसे किया।
जी जी बिल्कुल आपसे ही किया है।
अली भाई अगर पहले इसका जवाब देते हैं तो मैं बाद में उसके
अली भाई
उसको बढ़ाऊंगा आगे।
जी 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 अच्छा आप खुद आप मुबशर भाई आप फैसला करें मोर्चे में रह के कौन सा फायरिंग करता है
लेकिन वो जवाब देंगे
तो अब खैर मैं ये बता देता हूँ। अब यहाँ हमने आपको जो है ना वो टेबल टेनिस का बॉल बना दिया, दरमियान में एक शॉट मार रहा
है। नहीं, लेकिन ये अच्छा सवाल है
अपनी
नहीं, अली भाई का जो अंदाज है टेबल टेनिस का वो काफी इनका मजबूत लंबा हाथ है, तो मेरे ख्याल से मुबशर भाई के गोल सर के साथ आपका हाथ काफी बेहतर काम करेगा।
सर डिफरेंट स्टाइल है ना, वो उर्दू में कर रहे हैं, उमर शरीफ जो है उन्होंने उर्दू में किया है, अमानुल्लाह साहब ने पंजाबी में किया है। उमर शरीफ साहब के साथ मैंने काम नहीं किया हुआ कभी भी
जी।
मैं तो कभी उनको देखा भी नहीं है,
नहीं लेकिन
मुलाकात भी नहीं है,
नहीं देखा।
लेकिन जो उनके मैंने वो देखे हैं बकरा किस्तों पर और वो जो उनके जो स्टेज प्लेज हैं, जब भी वो अपीयर हुए स्क्रीन पे तो बहुत मजा आया, शानदार उन्होंने किया। लेकिन अमानुल्लाह साहब का मैं ये कह रहा हूँ कि उनके साथ तो मैं काम कर चुका हूँ। अब काम के दरमियान एक हमारा पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं पैच वर्क, वो हम ऑडियंस को फ्री करने के बाद रिकॉर्ड करते हैं। कुछ ऐसा ऑडियंस क्या करते हैं, कुछ ऑडियंस के बगैर करते हैं। ऑडियंस के बगैर करते हैं वो फिर हार्ड कोर कॉमेडी की तरफ जाते हैं, यानी उस वक्त बार बार ये नहीं और अच्छी यानी फीकी होगी, नहीं इसमें मजा नहीं, और तगड़ी लगाओ। वहां पर आर्टिस्ट का पता लगता है कि इसमें कितना पोटेंशियल है। तो जो आमद अमानुल्लाह साहब की थी, यानी उनकी ऑब्जर्वेशन में से ऐसी कोई चीज निकालते थे बाहर कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता था, ये क्या बात कर गए हैं, एकदम परेशान हो जाता था। यही बात उमर शरीफ मोइन अख्तर साहब को अल्लाह जान नसीब करे, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यही बात कही थी सेम 2009-10 में कहीं मैंने ये देखा था। लेकिन जब मैंने खुद साथ काम किया अमानुल्लाह साहब के तो तब मैं समझ पाया हूँ कि वो किस पर इशारा कर रहे थे ये बात।
ठीक,
कमाल किया मतलब।
शफात आप बताएं क्योंकि मेरे पास एक और बहुत ही फड़कता हुआ सवाल है वो, लेकिन मैं इसके बाद करूंगा, पहले आप मुझे जवाब दें इसका।
देखिए पहली बात तो ये कि पंजाबी और उर्दू का कंपैरिजन मेरे ख्याल में कुछ किसी हद तक बेरहमाना है, क्योंकि पंजाबी में इख्तिसार एक इंतहाई नौयत का है और पंजाबी जुबान में बड़े थोड़े अल्फाज में बहुत बड़ी बात हो जाती है, उर्दू में ये सहूलत नहीं है, जिसकी वजह से टाइमिंग आपको डेफिनेटली पंजाबी में बेहतर सुनने को मिलती है। आप खुद पंजाबी समझने वाले हैं, आपको इस बात का बेहतर अंदाजा होगा। और कराची में जो कॉमेडी है उसका मसला ये है कि वो इलाकों के लिहाज से तकसीम है, यानी कोरंगी की कॉमेडी अलग है, नाजोबाद की कॉमेडी अलग है, लियारी की कॉमेडी बिल्कुल ही अलग है, और फिर जो डिफेंस क्लिफ्टन की कॉमेडी है वो अलग है, वो उसकी उस तरह से पजीरा ही नहीं है। हाँ अलबत्ता उर्दू समझने वाले हर जगह मौजूद है, लेकिन मुझे उमर शरीफ साहब के स्टेज से ज्यादा स्टेज पे जो काम साथ हाथ था, लेकिन जो 80 की दिहाई में जो उनकी कैसेट्स आती थी ऑडियो कैसेट जिसमें वो मुख्तलिफ नौइयत के कैरेक्टर्स करते थे, कि घर में बारात आ गई है, बारात के अंदर एक पागल घुस आया है और वो पागल जो है वो पूरी बारात को वापस पलटाने पे तलब, और सारे कैरेक्टर्स उनके अपने बनाए हुए होते थे और वो कमाल चीज होती थी, वो स्टेज पे देखने में शायद वो तासुर नहीं मिल पाता था, और ना उस नौइयत का कोई काम मैंने पंजाबी में सुना है जो उमर शरीफ साहब कर गए। तो अगेन वही बात की ये ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने जमाने से 30-35 साल आगे का काम कर चुके हैं और हमें उन तक पहुंचने के लिए 2-3 जन्म दरकार है।
अच्छा मैं अली मीर साहब से एक सवाल करना चाहूंगा, थोड़ा सा यानी शायद पसंद आया आपको सवाल, लेकिन मेरा ख्याल है मैं कर ही दूं कि आपके जो कामयाबी है और आपको जो इतना लोग पसंद करते हैं उसमें बहुत बड़ा किरदार मेकअप आर्टिस्ट का भी है, यानी अमानुल्लाह जो है वो कोई भेस नहीं बदलते, जो कुछ भी है वो उनका उनके उनका ان کی گفتگو ہے, جملے بازی ہے, وہ اسی سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. لیکن آپ کو کافی, یعنی آپ کا, آپ کی کامیابی میں اس میک اپ کا ہی بہت حصہ ہوتا ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے؟
سر میں تو اس میں یہ کہوں گا 50% تقریباً 50% جو ہے نا وہ میک اپ آرٹسٹ کا ہاتھ. وہ تو آدھا مجھے تیار کر کے بٹھا دیا آپ, جب یہ تو ویژول میڈیم ہے نا, آڈیو تو نہیں ہے
جی,
آپ نے سامنے دیکھ لیا, اب آپ اس کو ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ یہ نواز شریف بیٹھے ہوئے ہیں. بس اس کے بعد پھر یہ والی چیز آتی ہے کہ میں آواز کیسی بنا رہا ہوں اور میں بول کیا رہا ہوں, یعنی جو اسکرپٹ اور آواز ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ 20-25% ہے ان کی, 50% جو ہے وہ اس کا ہے. کیونکہ اگر گیٹ اپ ٹھیک نہیں, آپ ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں بنا ہوا صادر ٹھیک ہوں اور گیٹ اپ میرا انور مقصود والا ہوا ہوا, وہ جتنی مرضی اچھی آواز بنا لوں تو آپ نے ایک سیکنڈ میں نہیں دیکھنا.
اور یہ جو اسکرپٹ ہوتا ہے جو آپ بولتے ہیں, وہ آپ خود لکھتے ہیں یا آپ کو کوئی لکھ کے دیتا ہے؟
نہیں, ہماری ٹیم ہے جی, ہم 5-6 لوگوں کی ٹیم ہے, ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں اس میں, ہم لوگ سارے مل کے کرتے ہیں, اپنا ان پٹ بھی ہوتا ہے ان کا ان پٹ بھی ہوتا ہے.
اور کیا کوئی فرق پڑا ہے آپ کے جو یعنی ٹیم ہیڈ ہیں, جیسے آفتاب اقبال تھے, یا لوگ بدلتے رہتے ہیں, ظاہر لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, اس سے بھی کچھ فرق پڑتا ہے؟
سر بہت فرق پڑتا ہے, بہت زیادہ فرق پڑتا ہے, ہر بندے کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہے, اپنی ایک کلاس ہے, اب ان کا آپس میں ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے
جی.
آفتاب صاحب کا ایک اپنا اسٹائل تھا, اب جو ذیشان صاحب جو ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیں جو بناتے ہیں چیز, ان کا ایک اپنا اسٹائل ہے
جی جی, ذیشان بھی دوست ہیں ہمارے,
ڈومین ہے ان کی, اپنی ڈیمانڈ ہے جی جی, وہ اپنے گراؤنڈ پہ کھیلتے ہیں, یہ اپنے گراؤنڈ پہ کھیلتے ہیں, تو اپنا اپنا انداز ہے ساتھ دونوں کا. لیکن میں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے, جیسے خبرناک جو ہے وہ اکیلا میرا تو نہیں ہے
جی,
آن اسکرین لوگوں کا بھی نہیں ہے, آن اسکرین تو 8-10 لوگ ہوں گے. میں نے ہمارے جو اینڈ کریڈٹس چلتے ہیں تو تقریباً 42 لوگوں کے نام ہیں
جی,
42 لوگ مطلب 42 خاندان.
بالکل,
اب 42 خاندان مطلب کم از کم 10 بندہ تو لگائیں آپ ایک بندے کے اوپر, یعنی اس کے اپنے بال بچے بھی ہوں گے, اس کا ہو سکتا ہے والدین میں سے کسی کا علاج چل رہا ہو, کسی کا کچھ چل رہا ہو, کسی کی دوائیاں, کسی کا کھانا پینا, تو اللہ تعالیٰ نے بھوکے تو نہیں مار رہے نا
جی.
ان کی وجہ سے یعنی خدا, میرا خیال ہے کسی بھی ایک بندے کو کی وجہ سے کوئی کسی چیز کو بڑی بڑی چیز کو نہیں روکتا, اس وجہ سے چلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کام.
نہیں, بہت آپ نے پازیٹیو بات کی, اور صرف یہی نہیں کہ صرف ایک پروگرام ہے, بلکہ آپ کے پروگرام کی دیکھا دیکھی اور بھی 4-6 جگہوں پہ الگ پروگرام ہو رہے ہیں, اور سب ظاہر ہے ان سب سے بھی اتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے.
میں ہمیشہ, مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح کمپیریزن ایک ٹائم سلاٹ کے اوپر آئے نا, اور اچھے 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 پروگرام آئے
جی,
اس سے ہماری بھی اچھی بڑھتی ہے. آپ کی اب جیسے 11-12 کا ٹائم ہے ہمارا
جی,
اب 11-12 میں ہی حسب حال بھی چلتا ہے, اسی میں آفتاب صاحب کا پروگرام بھی چلتا ہے, باقی پروگرام بھی چلتے ہیں. اب جو مجھے نہیں پسند کرتا, آفتاب صاحب کو پسند کرتا ہے, وہ 11-12 بیٹھے گا نا دیکھنے کے لیے.
بالکل.
اور جو نہ مجھے پسند کرتا ہے, نہ آفتاب صاحب کو پسند کرتا ہے, سہیل احمد کو پسند کرتا ہے, تو وہ بیٹھے گا نا
جی.
تو ہوتا کیا ہے کہ جہاں ایک جگہ کمرشل آتے ہیں تو وہ چینج کر کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں, دوسری جگہ چینج کر کے تیسری جگہ.
اور اب تو یوٹیوب ہے, ڈیلی موشن ہے, ظاہر ہے لوگ پھر بعد میں بھی پروگرام جو پسندیدہ ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں. علی میر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, بہت آپ سے اچھی گفتگو رہی, اور شفاعت آپ کا بھی میں بہت آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں, آپ نے آج دوستی بھی نبھائی اور بہت اچھی گفتگو کی. آپ لوگوں سے انشاءاللہ پھر رابطہ کریں گے, پھر کسی اچھے موقع پر اچھی اچھی باتیں کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ, اور وہ سب ناظرین سامعین جنہوں نے ہمیں آج جوائن کیا وہ بھی آج کی گفتگو سے محظوظ ہوئے ہوں گے. میرا نام ہے مبشر علی زیدی, اور ہماری پروڈیوسر تھی گلرو.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. Oh, 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 oh
افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے قطر میں موجود طالبان عہدیداروں سے مذاکرات کیے ہیں۔ زلمے خلیلزاد کا طالبان کے ساتھ مذاکرات کا یہ دوسرا دور تھا۔ ان مذاکرات سے متعلق دونوں فریقوں کی جانب سے اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ ہمارے ایک پروگرام جہاں رنگ میں اس موضوع پر مبصرین سے تفصیلی بات ہوئی۔ اس گفتگو کے کچھ اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ پاکستان سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد کہتے ہیں کہ افغانستان میں قیام امن سے متعلق قطر میں طالبان اور زلمے خلیلزاد کے مابین حالیہ کوششیں ایک مثبت قدم ہے۔
اندرونی چیلنجز کے علاوہ بیرونی چیلنجز بھی ہیں، کیونکہ اس میں دوسرے ممالک بھی اس میں اس کے ایک سٹیک ہولڈر تو ہیں، کسی نہ کسی حد تک پاکستان ہے، کہ جو ملٹری کمیشن کے جو سربراہ ہیں ابراہیم صدر، ان کی ایران کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ اس طرح روس جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ان کے ساتھ بھی ہے، چائنا کی بھی پاکستان کے ذریعے ان کے ساتھ کچھ روابط ہیں۔ تو یہ ان ساروں سے مطلب ہے کہ بات چیت کرنے کے لیے ان سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہونا پڑے گا، کیونکہ طالبان بھی ہے ان کے ساتھ بات چیت کریں گے کہ کس طرح جو افغانستان کا مسئلہ ہے، جو ان کی جو سب سے بڑی جو مطالبہ سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکن فوج جو ہے وہ افغانستان سے کس وقت نکلے گی، کیا برنامہ ہے اس کا، کیا اس کا پروگرام ہے۔ تو یہ بڑا صبر آزما ہوگا، لڑائی شدت اختیار کر سکتی ہے، تو صبر دکھانا ہوگا، بڑا مشکل کام ہوگا، لیکن ایک کرن ہے امید کی۔
یہاں واشنگٹن ڈی سی میں سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری کہتے ہیں کہ ان کے اطلاعات کے مطابق دونوں فریق بات چیت کے بعد پر امید دکھائی دیے، اور اس بات کی تصدیق طالبان ذرائع کی جانب سے بھی کی گئی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ امن کا قیام اتنا آسان بھی نہیں۔
ظاہر ہے یہ جو پیش رفت سامنے آئی ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس قسم کی جو فضا ہے یا اس قسم کی جو لینگویج یوز کی جا رہی ہے طالبان کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے، یہ ایک نئی تبدیلی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں پیچیدگی یہ ہے کہ جو ملا عمر کی جو ڈیتھ ہے اور اس کے بعد ان کے جانشین کی بھی جو ڈیتھ ہوئی ہے، تو طالبان جو ہیں اب کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور اگر دھڑوں میں تقسیم نہیں بھی ہوئے تو یعنی باقاعدہ دھڑوں کے اندر جن میں مطلب یہ کہا جائے کہ جی یہ ایک علیحدہ گروپ ہے اور وہ دوسرا علیحدہ گروپ ہے، تو ان کی جو قیادت ہے وہ ایک طرح سے منتشر ہو چکی ہے، اور اس کے تعلقات جیسے آپ نے اور ہمارے بہت سارے مختلف ان کے چینلز ہیں۔ تو یہ ساری جو گفت و شنید ہے جو مختلف لیول پہ چل رہی ہے، یہ کس طریقے سے ایک انجن کے طور پہ جو ہے اکٹھی ہوگی اور جو پیس ٹاکس ہیں ان کو فردر کرے گی، یہ ابھی کہنا بڑا مشکل ہے۔
افغان امور کے ماہر ڈاکٹر حسین یاسا کہتے ہیں کہ طالبان اور افغان حکومت کے نظریے اور سوچ میں بہت زیادہ فرق ہے، اور ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ زلمے خلیلزاد اس فرق کو کس طرح کم کرتے ہیں۔
اس میں جو ہے کئی باتیں جو لیک ہوئی ہیں وہ ان کے طالبان کے موڈ سے بنتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اس حکومت کو ایک مشروع حکومت کے طور پر، ایک لیجیٹمیٹ ایڈمنسٹریشن کے طور پر وہ قبول نہیں کرتے ہیں اس کو، اور وہ انتخابات کو بھی ایک غیر شرعی عمل مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس پروسیس کو اس زیادہ مطمئن نہیں ہے کہ یہ ایک گویا ایک پلان ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو جو انڈرمائن کر کے طالبان کو ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے کچھ اور مطالبے وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں طالبان کے حوالے سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایک سیف زون دیا جائے افغانستان میں، جو کہ وہ 6 صوبوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اپنے سارے جو پریزنرز ہیں ان کی آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور شمالی علاقوں میں بھی جو وہ ایک دو پروونسز کو جو ہے صوبوں کو وہ اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں سیف زون کے طور پر۔ اور دوسری بات جو یہ ہے جو لوگوں کے اندر وہ عدم اطمینان کی کیفیت جو انہوں نے پیدا کی ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کانسٹیٹیوشن کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور ایک کمیشن بنایا جائے جوائنٹ کمیشن کے ہمیں جو ہے ریویو کرنا پڑے گا، ایک نیا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک عجیب سی صورتحال بن رہی ہے کہ دونوں طرف کے جو مطالبات ہیں اس میں زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ اب خلیلزاد صاحب اس فاصلے کو کس طرح کم کریں گے اور ایک کانسنسس کس طرح پیدا کریں گے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے سب کے لیے۔
یہ تھے افغان امور کے ماہر ڈاکٹر حسین یاسا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس۔